यो उसने आंख फाड़ी, चारों तरफ आंख घुमाई, घुमा करके ए देखो देखो देखो, इस समुद्र के परे एक त्रिकूट पर्वत पर लंका है और उस लंका में अशोक वाटिका है। उस अशोक वाटिका के अंदर अनेक राक्षसियों से घिरी हुई सीता बैठी हुई है, सुरक्षित है, अभी तक सीता जीवित है। अब आप लोग सीता को अपनी दृष्टि से देखना चाहो तो समुद्र को पार करो, समुद्र को पार करके लंका में जाओ। कई बंदरियों देखने लगे हूं, देखे कि देखो आप लोगों को नहीं दिखेगा, हम गिद्ध हैं, गृद्धत्वात् दूर दृष्टि में तुम नहीं देख सकते। गिद्ध ही दृष्टि अपार, गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, आपकी दृष्टि वहां तक पहुंच नहीं सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं बंदरों, आप में से जो इसको सीता जी को अपने नेत्रों से देखना चाहो तब तो देखो समुद्र का लंघन करो और जानकी के वहां पर जाओ, जानकी का मालूम करो। इतने ही समुद्र को पार जाना और इतने ही समुद्र से फिर वापिस आना, इतनी लंबी जो यात्रा कर सकता हो। तो बताओ कौन है आप में? अरे क्या बताएं बंदरों, हम तो अब बहुत बुढ़े हो गए, हम यदि जवान होते तो अकेले ही लंका में चले जाते, रावण को मार देते, सीता को ले आते, पर क्या करें, हमारे तो पंख भी तो नहीं है, हमारे पास उड़ने का साधन तो पंख है ना, पंख भी नहीं है। इसलिए आप लोगों को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। पर एक बात बताता हूं आपको, मैं शकुन भी जानता हूं, अभी कुछ ऐसे शकुन हो रहे हैं ये रावण मरेगा और राम को विजय मिलेगी और विजय के साथ में सीता जी भी मिलेंगी। उल्लंघे सिंधु, बस इतना ही काम करो, इस 100 योजन समुद्र का उल्लंघन करना है, फिर लंका के अंदर बैठी हुई सीता से बात करके आप में से कौन आ सकता है ये तो आप लोग ही विचार कर सकते हो। बंदरों ने कहा, हे संपाति जी, आप और जटायु दोनों सगे भाई हो, जटायु तो कहां रहे, आप कहां रहे, इतने दूर आपका बिछो कैसे हो गया, आप अपना चरित्र सुनाएंगे क्या? क्योंकि आपके अंदर भी आपने सीता के अभी दर्शन कर लिए तो अब आप सामान्य गीत नहीं रहे, सीता के दर्शन करने के कारण से आप पवित्र हो गए, इसलिए आप जैसे पवित्र महात्माओं की कथा सुनना चाहते हैं, बताइए आपका क्या चरित्र है। संपाति ने कहा, बंदरो, मैं और जटायु दोनों सगे भाई एक बार एक पर्वत पर बैठे बैठे सोचने लगे कि ये सूर्य कहता है कि मैं इतनी ऊंचाई पर हूं, आओ मेरे यहां पर कोई पहुंच सकता है क्या, ये जो ऐसी ऊंचाई पर सूर्य रहता है, अपने चले ना बड़े वेग से, देखें क्या करता है सूर्य। तो दोनों के अंदर हठधर्मिता जगी, हम दोनों जवान थे, छोटी उम्र थी, हम दोनों ऊपर चलते गए, उड़ते गए उड़ते गए, उड़ते 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 हम सूर्य मंडल के पास तक पहुंच गए थे, हजारों हजारों योजन ऊपर चले गए। वहां जाने के बाद सूर्य की किरणों की जब बहुत ज्यादा तपत लगी ना, तब मुझे मेरे छोटा भाई था, वो छोटा भाई उसके चोंच के अंदर झाग आने लगे, घबराने लगा वो, तो मैंने उस छोटे भाई के ऊपर अपनी परछाई डाल दी कि कम से कम मेरा छोटा भाई है, इसको तो आंच न लगे। तो मैंने अपने पंखों से उसको जो आच्छादित कर दिया और आच्छादित करने के बाद मैंने कहा, जटायु तू निर्भय हो जा। जटायु कहने लगा, भैया मुझे बचाकर तुम प्राण दोगे तो क्या फायदा। तो ऐसे करते करते मैं भी नीचे गिर गया और वो भी नीचे गिर गया। अब वो जाने कहां गिरा और मैं जाने कहां गिरा। उस समय मुझे कोई होश नहीं था कि मैं कहां हूं, ऐसे में एकदम केवल शरीर में प्राण थे और कोई होश नहीं था। 3 दिन तक मैं उस पर्वत के ऊपर यूं ही पड़ा रहा। 3 दिन के बाद मेरी आंख खुली, आंख खुली, मैंने देखा कि मैं कहां हूं। अब कहां हूं का तो पता ही नहीं चला। इधर उधर देखने लगा किससे सहायता लूं, तो पास में एक आश्रम दिखाई दिया। मैं लुढ़कते लुढ़कते उस आश्रम के वहां गया। उस आश्रम में चंद्रमा नाम के एक ऋषि रहते थे। मैं उनके आश्रम गया, वहां पर मैं रोने लग गया। चंद्रमा ऋषि ने बहुत प्यार से मेरे शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, संपाति, ऐसा रूप तुम्हारा कैसे हो गया? मैं तो तुम्हारा बहुत अच्छा रूप देखा हुआ हूं, क्या तुम्हारे अंदर तेज था? काले कलूटे हो गए, पंख तुम्हारे जल गए, क्या बात है? कौन सी अग्नि में धंस गए थे क्या? अग्नि तो तुमको, सामान्य अग्नि तो तुमको जला नहीं सकती है, बोलो क्या बात है? अपनी बात तो बताओ हमको। तब मैंने उनको सब बात बताई कि मैं सूर्य के ताप से जल गया, मेरा भाई भी जल गया। तब उस मुनि ने समझाते हुए कहा कि देखो संपाति, इस अज्ञान का मूल कारण क्या है? इस अज्ञान का मूल कारण है शरीर के प्रति मैं भाव रखना। ये शरीर है, अनेक प्रकार की क्रियाओं को करता है, और शरीर से संबंध रखने पर ये आत्मा भी कहता है कि ये काम मैं करता हूं। अरे करने वाली चीज कोई और है, लेकिन वो बहम करता है ये मैं करता हूं। देखो अपने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अपने को ये मशीन है ना, ये चित्र में ले रही है, चित्र में ले रही है, पर लेने का काम तो है मशीन का, लेकिन मशीन को चलाने वाला ये अभिमान करता है कि देखो मैं सबका चित्र ले रहा हूं। अरे आप क्या ले रहे हो, ये तो मशीन ले रही है, तो आप तो इसका उपयोग करते हो। उपयोग करने मात्र से मशीन जो काम करती है वो अहंकार ये मशीन वाला आदमी करने लग जाता है। ऐसे ही शरीर से होने वाली क्रियाओं को ये आत्मा अपनी क्रिया मानने लगता है। कर्म प्रवर्तते देहे अहम बुद्धिया पुरुषस्य ही। अहंकार अनादि है, अहंकार भी जड़ है, और वो भी अहंकार एक प्रकाश में दिखाई देता है, लेकिन बुद्धि और चिदाभास का संबंध होने पर ऐसे ही बात हो जाती है जैसे एक एक सहेली दूसरी सहेली से पूछती है कि बहन आज तुम्हारा ये हाथ कैसे जल गया? ये कह बहन आज तो चींपिए से मेरा हाथ जल गया, रोटी बना रही थी चींपिए से हाथ जल गया। अंगुली कैसे जल गई बहन? ये तवे से जल गई। अब जलाने का काम तो अग्नि का होता है, तवे का नहीं है, चींपिए का नहीं है, और चिन्ह जो मंडा है वो तवे का है और चींपिए का है, तो चिन्ह है वो अग्नि का नहीं हुआ करता, लेकिन दोनों का तादाद में हो गया, अग्नि का और तवे का, अग्नि का और चींपिए का, तो वो वहां अपने को दिखता है। ऐसे ही देहो हम इति बुद्धि, जब मैं ही देह हूं ऐसा विचार करता है तब इसके अंदर अहंकार की सब क्रियाएं उसमें आ जाती है कि मैं करता हूं तो मैं करता हूं, तो भाई जैसा करते हो फिर उसका फल भी भोगो। जो करता है वही भोगता होता है, जो नहीं करता है वो भोगता नहीं होता, नहीं करता है वो भोगता भी नहीं होता, और करता है वही भोगता होता है। आत्मा वास्तव में निर्विकार है, लेकिन जबरदस्ती वो उसको मान लेता है कि मैं ये मैं करता हूं। इसी कारण से जीव अनेक प्रकार के कर्म करता है। अब वो जैसा कर्म करता है उन लोकों में जाता है और उन लोकों में कर्म फल भोगता है, फिर ईश्वर कृपा करके इसको मानव शरीर में भेजते हैं, और मानव शरीर में भेजते हैं तो पहले वो माता के शरीर में आता है, वहां पर उसका क्रमशः विकास होता है, और फिर नौवें महीने में आकरने के बाद जब वो बाहर आता है तब वो बाल्य अवस्था में पिछली सब बातों को भूल जाता है। वहां माता के पेट में स्मृत्वा सर्वाणि जन्मानि, सब जन्मों की बातें याद करता है, और जठराग्नि के संताप से अंदर जलता रहता है। वो भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, मुझे बाहर निकालो। नाना योनि सहस्रेशु जाय मानोन भूतमान, उसके सामने सब रील सामने आती है कि मैंने इस जन्म में ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, ऐसी ऐसी उसके सामने बातें याद आती है, और वो भगवान से बहुत प्रार्थना करता है कि महाराज मैंने पाप तो बहुत किए हैं, लेकिन अब मैं उन पापों से छुटकारा के लिए मनुष्य शरीर में आया हूं, तो अब महाराज आप मुझे बाहर निकालिए। कब निकालेंगे, कब मुझे इस दुख से पिंड छूटेगा मेरा इन दुखों से, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, हे विष्णु भगवान मैं सदा ही आपकी पूजा करता रहूंगा। ऐसे वो बराबर प्रार्थना करता है और फिर वो बाहर आता है। जैसे कोई मवाद होती है, वो मवाद बाहर आती है, ऐसे वो बाहर आता है, और बाहर आने के बाद फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है, वो सब पीछे की बात को भूल जाता है और फिर नाना प्रकार के कर्मों के अंदर फंस जाता है। इसलिए भाई ये सब बातें इस जीव की होती रहती है। तुम्हारा भी कोई पिछले जन्म का फल था कि तुमको ये पाप भोगना पड़ा, तुम्हारी ये दशा हुई है, लेकिन देखो तुमने हमारे से सत्संग किया है ना, इसलिए मैं तुम्हारे हित की एक बात बताता हूं। त्रेता युग तक तो तुम्हारी यही दशा रहेगी। त्रेता युग में जब भगवान नारायण दशरथ के यहां अवतार लेंगे और वे रावण के वध के लिए दंडकारण्य में जाएंगे, तब रावण सीता का हरण करेगा, और हरण करने के बाद जब वे राम जी सीता को ढूंढते ढूंढते सुग्रीव के साथ मित्रता करेंगे, और सुग्रीव के अनुचर जब तुम्हें कहीं मिल जाएंगे उस समय में तुम सीता की चर्चा उनके सामने बोल देगा, तब तेरे पंख आ जाएंगे, ऐसा मुझे कहा है। ये संपत्ति बोला, चंद्रमा ऋषि ने मुझे ये बात कही है। संपत्ति ने कहा कि ये देखो ये मेरे पंख आ गए, देखो नए नए पंख आए, देखो कितनी सत्यवाणी है ऋषि की, ये मेरे पंख आ गए, अच्छी बात है, ये मेरे पंख आए, छोटे छोटे कोमल कोमल पंख है, अब तो ये बाकी शरीर थोड़ा भारी है, ये पंख भी थोड़े बड़े हो जाएंगे, अब आप लोग जाओ, आप अपना काम करो। हमें चंद्रमा ऋषि ने ये नहीं कहा था कि उस पंख आने के बाद तुम उड़ करके सीता जी की खोज करना, ये नहीं कहा है। इसलिए नहीं कहा है कि जो राम के दर्शन करके आए उनका क्या होगा, यदि तो भी सीता को जाकर के खोज लोगे तो राम जी के दर्शन करके जो आए उनका क्या होगा, इसलिए तुम तो केवल दिग्दर्शन करा देना, वो मैंने तुमको दिग्दर्शन करा दिया है, आप जाओ ढूंढो सीता जी को। यन्नाम स्मृति मात्र तो परिमितम संसार वाराहम निधिम, देखो जिनका नाम अपार सागर संसार सागर से पार कर देने वाला होता है, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट भी संसार से तर जाता है, भगवान के शाश्वत वैष्णव पद को प्राप्त हो जाता है, उन भगवान की लीला के अंदर आप लोग सीता जी की खोज के लिए चले हो, आप राम के प्रिय भक्त हो, एक समुद्र को ही तो तरना है, ये कौन सी बड़ी बात है, कौन सी असंभव बात है। हे बंदरों आपके लिए बड़ी सुगम है, आप बड़े आसानी से इसको पार कर सकते हो। भगवान शंकर कहने लगे, इतना कहकर संपाति तो वहां से उड़ करके और अपने जाने कहां चला गया। इधर बंदर लोग सोचने लगे कि देखो हमको कहीं पर भी कोई बात मिली है तो बड़ी आशाजनक बात मिली है, हमको आशाजनक बात मिली है। सब लोग हमारी सहायता कर रहे हैं। जो मारने के लिए गीदराज यूं चौंच फैला रहे थे और जिनका हृदय हमारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, वो गीदराज भी हमारी सहायता किए हैं। तो कोई न कोई हमारे पर जो ऐसी कृपा हो रही है, जिस कृपा से सीता जी की खोज अपने लोग कर सकते हैं। परंतु समय तो निकल ही गया और गीदराज ने भी कह तो दिया कि सीता सुरक्षित है, लेकिन समुद्र को पार करके सीता जी की खोज अपने लोग करेंगे तो समुद्र को पार कैसे करेंगे? समुद्र का पार करना अपने में से कौन संभव कर सकता है? जो व्यक्ति अपने में से समुद्र को पार करेगा वो इतने बंदरों को जीवन देने वाला होगा, वो सुग्रीव का काम करेगा, राज्य के कार्य में सहयोग करेगा, बंदरों का प्राणदाता होगा। इसलिए जल्दी करो, तद उत्तिष्ठतु मे शीघ्रम पुरुतो यो महाबल है। आप में जो बलवान हो बोलिए तो सही, कौन पार कर सकते हो? राम की बहुत बड़ी सेवा होगी, बंदरों करो हिम्मत आप में कोई। सो योजन समुद्र है, इसको पार करके इतने बंदरों का प्राण बचाने का पुण्य आप में से कौन लेगा? युवराज की ये बातें सुनी सब बंदर चुपचाप बैठे रहे, एक दूसरे को कहने लगे, देखने लगे कि तुम जा सकते हो यार, सो योजन है। सो योजन का 400 कोस है, 400 कोस पर उड़ते ही रहना ये थोड़ा बड़ा मुश्किल काम लगता है। उच्चताम आप बोलिए ना, अंदर ही अंदर क्या गोष्ठी कर रहे हो? उच्चताम बोलिए, हम तो प्रत्येक को अवसर देते हैं, बताओ आप में से कौन बोलेगा? एक बंदर खड़ा होकर बोलता है, अंगद जी मैं 10 योजन तो जा सकता हूं, क्योंकि 10 योजन जाने के बाद मुझे ये भी तो सोचना है कि मैं वापस कितना आ सकता हूं, तो 10 के बाद 10 और आना है तो 20 योजन हुआ। ऐसे ही ये 800 योजन का है, 800 कोस का मामला है, 400 कोस तो यूं है, 400 ही कोस वापिस आना है, 800 कोस का काम है। 800 कोस में से मैं तो 10 योजन जा सकता हूं, 40 कोस और 40 और 40 80 कोस जा सकता हूं, ज्यादा नहीं जा सकता, आ सकता। किसी ने कहा कि देखो हम 20 जा सकते हैं, किसी ने 30 के लिए कहा, किसी ने क्या कहा। जामवंत जी ने बताया कि देखो भाई, हम जो है पहले यदि जवानी में होते तो ये तो कोई खास साधारण बात थी, दूर जाना आना हमारे लिए बड़ा आसान था, 400 कोस हमारे लिए कोई बड़ी यात्रा नहीं थी। जिस समय में भगवान नारायण वामन रूप में थे और फिर त्रिविक्रम बने, तो हमने 21 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की थी, 21 बार त्रिसप्त कृत्व अहम अगाम प्रदक्षिण विधान थे, 21 बार मैंने परिक्रमा की। इस समुद्र की तो बात ही क्या है, समुद्र पृथ्वी सब मिला के इसकी 21 बार परिक्रमा की थी। अब तो बुढ़े हो गए भाई, इसलिए अब हम लांग नहीं सकते हैं। अंगद जी ने कहा, जामवंत जी आपकी जवानी की बात सुनकर हमें हमारी जवानी में एक बल आ गया, इतनी देर तक तो हम चुप थे, अब हम आपको कैसे, जा तो सकता हूं मैं, आते समय में थोड़ा भय लगता है, क्या पता मैं आ सकूं कि न आ सकूं, पुनर्लंघन सामर्थ्यम न जाना भी, ये मेरे में। अंगद कही जाऊं मैं पारा और आप वापिस आए, संशय भर हमको वापिस है, उसमें संशय हो रहा है वापिस आने में। पुनर्लंघन सामर्थ्यम न जानामि अस्तिवा नवा। तब जामवंत जी ने कहा कि भाई तुम तो हमारे राजा हो, न युक्तम त्वाम नियुक्तम में, आपको तो हम इस काम में भेज नहीं सकते हैं, आप आने में भी समर्थ हो तो भी हम आपको नहीं भेजेंगे। तो फिर ठीक है, नहीं भेजेंगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं जा तो सकता हूं और आप किसी हमको नहीं भेजेंगे तो मरेंगे और क्या होगा। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है अंगद, अपने पास एक ऐसा वीर है जिसको दिखाता हूं और वो निश्चित कार्य हमारा कार्य कर देगा और बहुत जल्दी कार्य कर लेगा। इतने में ही उन्होंने अपना हाथ हनुमान जी के कंधे पर रखा। ए हनुमान, किम रहस तूषणी मास्ते, क्यों चुपचाप बैठे हो? राम काज लगी तब अवतारा। अरे तेरा तो राम जी के काम के लिए ही अवतार हुआ है। राम कार्यार्थ में उत्तम जनितो सी महात्मना, राम जी के कार्य के लिए तेरा अवतार हुआ है भाई। ऐसे तुम अपने आप को छिपाए बैठे हो, जैसे तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, आग की तरह बैठे हो। खड़े हो, उठाओ और उठ करके राम जी के कार्य के लिए तैयार हो जाओ। उठो, याद करो उस दिन को जब तुम अपनी माता की गोद में थे, छोटे से बच्चे, मां से बार बार तुमने प्रार्थना की, मां मुझे कलेवा दो। मां ने कहा बेटा कलेवा तो नहाने के बाद न दूंगी, सूर्य भगवान उदित होंगे, सूर्य भगवान को हम अर्घ्य देंगे, सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगे, उसके बाद ही तो तुमको हम कलेवा देंगे। जितने आप वहां पर बैठे 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 बैठे, हाँ सूर्य भगवान तो उदित हुए ही थे और आप उड़ पड़े ही। उड़ते उड़ते जाकर के सूर्य के पास चले जाए और देखा कि अब सब सूर्य को हम अपने ले लेंगे, फल समझा अपने कि वृक्ष के ऊपर फल लगा हुआ है कोई। सूर्य के पास पहुंच गए, छोटे से बच्चे थे, पक्वम फलम जिग्रिक्षामि, मालूम है वो कितना था? पंचशतम, 500 योजन दूर था। फिर बीच में ही आपके ऊपर इंद्र ने वज्र से प्रहार किया और वह आपके ठोड़ी पर लग गई। आपके हनु, ये हनु है, हनु हनु बोलते हैं ठोड़ी को, ठोड़ी आपकी टेढ़ी हो गई हो और आप जो है नीचे गिर गए। नीचे गिर गए तो सब देवताओं ने आपको खूब 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 वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। तो उठे आप और अपने बाप के बल का स्मरण करो। वायुपुत्र है आप, आपके पास में कोई बड़ी बात नहीं है, आप खूब आसानी से समुद्र को पार करके लंका में जा सकते हो। हनुमान जी महाराज सुनते ही बड़े हर्षित हुए और हर्षित होकर के हनुमान जी ने जोर से नाद किया, किलकारी लगाई। किलकारी ऐसी जोर से लगाई जैसे कोई ब्रह्मांड के अंदर विस्फोट पैदा हुआ हो। पर्वताकार होकर के कहने लगे, बोलिए जामवंत जी महाराज, अब बोलिए क्या करना है। लंघयित्वा जलनिधिं कृत्वा लंकां च भस्मसात्, लंका को मैं तहस नहस कर आऊं, यहां से सीधा जाऊं, त्रिकूट पर्वत के जोर से लात लगाऊं तो त्रिकूट पर्वत वहीं पर लुढ़क करके समुद्र में डूब जाएगा, ऐसा कर आऊं? अरे ऐसा करोगे तो सीता जी का क्या होगा? हाँ तो उचित सिखावन दीजो मोई, अब बता दो करना क्या है। तो ऐसा करूं कि रावण को कुल सहित मार करके और सीता जी को ले आऊं? कि नहीं ऐसा भी मत करना, क्योंकि ऐसी आज्ञा नहीं हुई है, आज्ञा है सीता जी की खोज करने की। हाँ ये भी बात सही है। तो रावण के गले में फांसी डालकर उनको बांध करके और मैं उसको ले आऊं? कि ये भी बात नहीं करना, क्योंकि ये भी राम जी ने आज्ञा नहीं दी है। यदि तुम रावण को यहां ऐसे ले आओगे तो राम जी की महिमा का क्या होगा? तुम्हारी महिमा ज्यादा बढ़ेगी, राम जी की महिमा घट जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी राम जी से कि जाओ तुम रावण को मारो, और राम जी रावण के मारने के लिए यहां आए और वो काम तुम कर दोगे, तो राम जी ने जो देवताओं को वरदान दिया है वो तो सब झूठा हो जाएगा। अपने को तो राम जी की महिमा बढ़ानी है कि राम जी की महिमा घटानी है? तो फिर मैं लंका को यूं उखाड़ करके और गाजर मूली की तरह ला करके और राम जी के सामने लाकर वहां प्रवर्षण पर्वत पर लाकर रख दूं? ऐसा करना भी ठीक नहीं है। ऐसा करेंगे तब भी राम जी की महिमा नहीं हुई, क्योंकि लंका के अंदर ही रावण को मारना है। लंका के अंदर रावण को मारा जाए, उसी की धरती पर उसको मारा जाए, अरे वो सीता का पंचवटी से हरण किया है, सीता का हरण जनकपुरी से करता और सीता का हरण अयोध्या से करता तब तो कोई बात भी बनती, रावण की कोई महिमा भी होती, बल की महिमा होती। ऐसे ही राम की महिमा होगी, रावण की धरती पर रावण को परास्त करेंगे, इसलिए ऐसा मत करना। तो मैं क्या करूं आप बता दो, अब क्या करूं? तो तुम जाओ सीता जी को सांत्वना दो और जीती हुई सीता के शुभ समाचार लाकर राम जी को दो, और फिर राम जी तुम हम सबके साथ में लंका में जाएंगे और लंका में जाकर रावण को मारेंगे, उस समय में अपने राक्षसों के साथ घमासान युद्ध करेंगे, तो वो बल पौरुष लोग सुनेंगे, सुनेंगे तो लोगों के मन में राम जी के प्रति भक्ति भावना पैदा होगी। इसलिए तुम तो केवल सीता जी की खोज करके, सीता जी को आश्वासन दे करके और सीता जी के मनोभाव ला करके राम जी को दे दो, बस इतना ही काम करो। देखो हनुमान तुम्हारे पीछे किन किन की सहायता है, देखो औरों की तो सहायता तो है सो है ही, तुम लंका की तरफ जाओगे ना तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाप तुम्हारे धक्का लगाता रहेगा, वायु है ना तो तुमको जरा जोर नहीं आएगा, वायुपुत्र तो हमारे इतने इतने में तुम ही हो, इसलिए वो यहां भगता रहेगा, तुमको थोड़ा से बल में वायु तुमको उड़ा उड़ा के ले जाएगा। आ जाओ, जाओ हनुमान, तैयार हो जाओ। हनुमान जी महाराज ने अपने से जितने बड़े बंदर लोग थे सबको प्रणाम किया, सबने आशीर्वाद दिया। देखो ये बात है, सुग्रीव का आशीर्वाद था, लक्ष्मण जी का था, भगवान राम का आशीर्वाद था, अपने से बड़े जितने बंदर थे सबका उनको आशीर्वाद मिला। इति आशीर्वीर समामंत्री विशिष्ट प्लवगादिपि, सबने कहा कि ठीक है जाओ। अब हनुमान जी महाराज महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां जाकर के हनुमान जी ने अपना विशाल शरीर बनाया है, विशाल शरीर तो यहां भी बना लिया नीचे ही, और वहां जाने तो एकदम खुल गए हनुमान जी, वो आकाश की तरफ देखते हैं, समुद्र की तरफ देखते हैं, चारों तरफ दृष्टि डालते हैं, बहुत विशाल शरीर हो गया। महानगेंद्र प्रतिमो महात्मा सुवर्ण वर्णो ऋण चारु वक्त्र महाफणींद्रा वसुदीर्घ बाहुर वातात्मजो दृश्यत सर्वभूत, सब बंदरों की दृष्टि हनुमान जी पर, और हनुमान जी ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे एक पर्वत पर एक पर्वत ही आकर बैठ गया हो, एक पर्वत है और एक सोने का पर्वत है, हनुमान जी का गौरवर्ण था सोने का पर्वत ही हो, पर्वत पर आकर के कोई पर्वत बैठा हो ऐसे लगने लगे, ऐसे हनुमान जी महाराज की शोभा हो रही है। और हनुमान जी महाराज बड़े आनंद में डूबे हुए सतयोजन विस्तीर्ण सागर को घोर घोर घूर घूर के देख रहे हैं बड़े सावधानी से, और नेत्र बंद करते ही भगवान का ध्यान करते हैं और फिर कहते हैं सुनो बांदरों सुनो, मैं अब आकाश मार्ग से लंका की ओर जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा जैसे राम का बाण जाया करता हो, जैसे राम का बाण छोड़ा हुआ व्यर्थ नहीं होता ऐसे मेरी भी ये यात्रा व्यर्थ नहीं होगी, आज ही जाकर मैं सीता जी से मिलता हूं, आहो मैं कृतकारी हूं, कृतार्थ हो गया, भगवान ने मुझे बड़ा अच्छा ये सेवा का मौका दिया है, मैं कृतार्थ हो गया, मेरा काम पूरा हो गया, मैं अब राम जी के आकर फिर दर्शन करूंगा। अरे जिनका नाम मरते मरते भी आदमी ले लेता है और वो व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है, कितने कितने जन्मों के कितने कितने पाप राशि है वो सागर की, उससे वो राम इतना बोलते ही तर जाता है, तो फिर ये सागर और मेरे पास तो राम जी की अंगुली के है, अंगुली अंगूठी पड़ी है, ये भी तो भगवान का ही रूप है ना, ये अंगूठी मेरे पास है, कितना बड़ा बल है मेरे पास, मैं तो इस बल को भूल ही गया, इस अंगूठी के अंदर भगवान का ही रूप है, क्योंकि भगवान की वस्तु भगवद रूप ही होती है। अतएव ये मेरे पास बल है, मैं अभी जाता हूं उस भगवान का ध्यान करते हुए, ये छोटा सा समुद्र है ऐसे लांग लेता हूं। ऐसा कहकर के सब बंदरों को उन्होंने जोश दिलाया और अपनी ग्रीवा है, गर्दन है यूं सीधी की और एक दो हाथ यूं लंबे किए, और पीछे जो पैर थे उनको एक को आगे एक को पीछे करके जोर लगाया। जोर लगा करके हनुमान जी महाराज छलांग लगा करके आकाश में उड़ गए और बंदरों ने तालियां बजाई, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। पवन सुत हनुमान की जय। अपने भी शामिल हो गए भाई उन बंदरों के बीच में, बड़ी कृपा हो गई। अब हनुमान जी जा रहे हैं, देवताओं की मीटिंग हो रही है, देवता लोग बड़े खुश हो रहे हैं। देवता लोग मीटिंग करते हैं और आपस में विचार करते हैं कि देखो ये राम जी का दूत कितने तेजी से जा रहा है, वायु वेग से जा रहा है, अब इसके बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए। गच्छत के समाह सत्व वानरो वायु विक्रम है, वायु के समान पराक्रमी लंका में जाना जाता है, लंका में जाना चाहता है। अब इसमें कितना बल है, ये लंका में प्रवेश कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो नाग माता सुरसा को भेजा, सुरसा से कहा कि सुरसे जाओ तुम थोड़ी परीक्षा ले हो। सुरसा ने कहा देखो परीक्षा तो ले लूंगी मैं, परंतु कहीं कोई हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, नहीं होंगे। हनुमान जी को पता चलेगा ना कि देवताओं ने भेजा है, फिर हनुमान जी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि तो राक्षसों के ऊपर वक्र है। इसलिए देवताओं के द्वारा भेजी हुई समझ करके तुम्हारा किसी प्रकार से वे जो है नाराज नहीं करेंगे, नाराज नहीं होंगे वो। अब रवि देवता वृंद है कौतूहल समन्विता, देखो आप इसकी खूब परीक्षा ले हो, इसके काम में बाधा डालो और फिर वापिस यहां आ जाओ, और देखो ऐसा बाधा डालना कि इसके तकलीफ भी न हो, ऐसी बाधा मत डालना कि जिसके इसके अंदर कष्ट हो, तो राम जी के काम में बाधा पड़ेगी ना। बुद्धि बल लेना इसका, बुद्धि बल, शरीर बल की परीक्षा नहीं, बुद्धि बल की परीक्षा लेना, क्या ठीक बात है। ऐसे चलते चलते ये हनुमान जी महाराज के सामने आ गई सुरसा। देखो हमारे तुलसीदास जी महाराज ने तो पहले मैनाक को भेजा है, व्यास जी महाराज ने पहले सुरसा को भेजा है, मैनाक को बाद में भेजेंगे, और फिर सिंगिका को बाद में भेजेंगे, और उसके बाद लंकिनी आएगी। तुलसीदास जी महाराज ने पहले मैनाक को भेजा है, फिर सुरसा है, फिर सिंगिका है, और फिर लंका, फिर ये लंका है, तीन है, कारण अलग अलग है। अस्तु, तो यहां क्या है, सुरसा को भेजा, तो सुरसा है वो मार्ग में आकर खड़ी हो गई और कहने लगी अरे भाई बंदर, मेरे मुख में प्रवेश करो, और मैं बहुत भूखी हूं, मैंने देवताओं से पूछा है कि मुझे किसका भक्षण करना चाहिए, तो देवैस्त्वं कल्पितो भक्ष्य है। देखो आपकी मोबाइल की घंटी बजती है ना, उस समय हमारे हृदय में तकलीफ होती है, क्योंकि हम यहां इधर दिमाग लगाते हैं, घंटी जाते ही दिमाग किधर ही जाता है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप उसको साइलेंट रख लो, बीच में आधी घंटे की छुट्टी होगी ना, उस समय आप बात कर लेना। अभी देखो आप, देखो कथा तो संसार को छोड़ करके सुनी जाती है, और आप मोबाइल में सारे संसार को लेकर के आए हो और यहां आकर के कथा में बाधा डालो, तो ये एक दोष की बात होती है। आपसे खूब बड़े विनम्रता से प्रार्थना है कि आप कथा का अपराध मत कीजिए, कथा का अपराध है, कथा को तोड़ने का पाप लगता है, वो जैसे किसी को कष्ट देने का पाप होता है, ये कथा को तोड़ने का पाप है, इसलिए आप इसको साइलेंट कर लीजिए। घंटी 9 बजे और आपके फोन आते रहेंगे, फिर थोड़ी देर बाद में बात कर लेना, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा तकलीफ हुई इसलिए बोलते हैं, एकदम ध्यान टूट ही जाता है। कभी कभी वाक्य हमारे बनते नहीं है, जहां टेलीफोन की घंटी बजी हमारा वाक्य टूट जाएगा, हमको पता ही नहीं हम क्या बोल गए। तो आपसे प्रार्थना है, क्योंकि शांति की बात है। आप ऐसा मत समझिए कि हम एक संत निवास में विवेक विहार में एक हॉल में बैठे हैं। आप हॉल में नहीं बैठे हो, शरीर बैठा है। आप मन से भगवान की कथा के अंदर डूबे हुए हो। बताओ कहां आप बैठे हुए, कहां ये टेलीफोन आपका भी नुकसान करता है, हमारा भी करता है, दूसरों का भी करता है, कथा का नुकसान करता है। इसलिए इस टेलीफोन को थोड़ा समझा के रखो। आवृत्य मार्गम पुरतः स्थित्वा बांदरम अब्रवीत। तो वो बंदर से कहने लगे कि भाई देवताओं ने तो मुझे कहा है कि तुम यदि बहुत भूखी हो तो ये बंदर आ रहा है, इस बंदर को खा लो। तो मैं तो देवताओं के कहने से तुम्हारे पास आई हूं, मैं तुमको खाना चाहती हूं। अब हनुमान जी को जब पता चला ना कि देवताओं ने भेजा है, तब हनुमान जी बड़ी नम्रता से कहते हैं, माता जी मैं मेरी मर्जी से कहीं यात्रा नहीं कर रहा हूं, मैं राम जी की आज्ञा से सीता जी की खोज के लिए लंका में जा रहा हूं। मैं सीता जी की खोज करके दुखी राम जी का संदेश सीता को देकर और सीता को सुखी करके और दुखिनी सीता का संदेश लेकर राम जी को प्रसन्न करने का काम करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। इतनी देर के लिए आप मुझे जीने का मौका दीजिए। हे सुरसा माता, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं आपके मुख में आ जाऊंगा। सुरसा का, अरे नहीं, इतनी देर तो बहुत हो जाएगी बंदर, मैं बहुत भूखी हूं, क्षुधितास्मि, बहुत ज्यादा भूखी हूं। प्रविश्य गच्छ मे वक्त्रम, तुम आओ और मेरे मुख के अंदर प्रवेश कर जाओ, नहीं तो मैं जबरदस्ती तुमको खा जाऊंगी, क्या फायदा। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छी बात है, अपना मुख फैलाओ। तो उसने मुख फैलाया, खूब बड़ा मुख किया, एक योजन तो हनुमान जी महाराज हो गए, वो उसके बराबर हो गए। अब सुरसा पंच योजनम, पांच योजन उसने बनाया तो हनुमान जी दस योजन हो गए, और वो बीस योजन हो गए तो हनुमान जी तीस योजन हो गए, अब वो पचास योजन हो गए सुरसा। जस जस सुरसा बदन पढ़ावा, तास दून कपी रूप दिखावा, दूना करते करते सत योजन तई आनंद की ना। तुलसीदास जी महाराज ने खूब बढ़ाया, सत योजन तई आनंद की। हमारे व्यास जी महाराज ने तो पचास से काम चला लिया हो, सो तक नहीं गए, पचास योजन मुंह बनाया। हनुमान जी महाराज छोटे से बन गए अंगूठे के समान और उसके मुंह में आ गए। मुंह में आए, देखो ये पूरा ये भाग था ना, ये बढ़ता गया बढ़ता गया, तो फिर कान भी बढ़ेगा। तो हनुमान जी मुख में से होकर कान में से निकल गए, अल्लो मां तुम्हारे मुख में से मैं तो होके आ गया, तुमने तो खाया ही नहीं। अब इतना बड़ा इतना मुख किया तो वापस खाने के लिए ये भी तो होना चाहिए ना, मुंह को ढकने के भी तो समय चाहिएगा। तब तक तो हनुमान जी कान के रास्ते से बाहर आ गए। बाहर आ गए तो कहा कि देखो मैं आपके मुख में अभी आ गया और बाहर भी आ गया हूं, हे देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं। देवी ने कहा, मैं तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूं हनुमान, मैं तो तुम्हारे बल की परीक्षा लेने के लिए आई थी, तुम बहुत बुद्धिमान हो, देवताओं ने मीटिंग करके मेरे को भेजा है, मैं कोई अपने मर्जी से तुम्हारे काम में नहीं आई हूं, जाओ मैं आशीर्वाद देती हूँ, देवताओं का भी आशीर्वाद है, तुम सीता जी को देख लोगे, राम जी को सब समाचार कह दोगे, तुम्हारी यात्रा ये बहुत सफल होगी। इतना कह करके और भी वायुपुत्र आगे चले। आगे चले तो समुद्र ने मैनाक से कहा, ए मैनाक पर्वत, हाँ हमारा मैनाक पर्वत था, वो समुद्र के अंदर डूबा हुआ रहता था। बात क्या हुई कि इंद्र है वो सब पर्वतों के पांख तोड़ रहे थे, पर्वत पहले पक्षियों के समान उड़ते थे, उड़ते थे तो जहां कहीं भी जाए ये बैठ जाए तो कितने आदमी मर जाए, जानवर मर जाए बेचारे। तो इंद्र ने इन सब के पांख तोड़ना चालू किया तो सब पर्वत हैज ही रह गए। ऐसे करते करते मैनाक पर्वत आया ना, तो इंद्र इनके पीछे दौड़ा, तो पीछे दौड़ा, उस समय वायु देवता ने कहा, मैनाक दौड़ता रहे, मैं तेरे साथ हूं, तुझे धक्का लगा रहा हूं, दौड़ता रहे मैनाक। ऐसा करते 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 समुद्र आया, तो वायु देवता ने जोर से धक्का लगाया तो वो समुद्र में डूब गया। समुद्र में डूब गया तो समुद्र ने कहा, चिंता मत कर, मेरे अंदर रहे। तब वो समुद्र के अंदर ही मैनाक रहता है। समुद्र ने कहा कि ए मैनाक, जिस वायु देवता ने तुम्हें धक्का दे दे करके तुम्हें बचाया था, इंद्र के वज्र से तुम्हें बचाया था, उसी वायु का पुत्र है ये हनुमान, ये अब लंका में जा रहा है, ये भूखा होगा, इसलिए तेरे अंदर बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल है, वो मीठे फल ले जाकर इनको भोजन कराओ, विश्राम दिलाओ, और मेरा भी तेरे पर उपकार है। और ये किसके लिए जा रहा है? ये राम के लिए जा रहा है, राम मेरे ही वंश में पैदा हुआ है, क्योंकि इसी इक्ष्वाकु वंश में एक सगर नाम का राजा पैदा हुआ, उसके बेटों ने मुझे खोद करके सागर संज्ञा दी है, और उसी वंश में इक्ष्वाकु वंश में दशरथ का बेटा ये राम है, तो ये मेरा भी काम है और राम जी का भी काम है, अतः मैनाक तुम जल्दी जाओ और हनुमान को थोड़ा तुम जो है सहायता दो, ताकि हनुमान को कुछ शक्ति मिल जाए। उठो और त्वई विश्रम्य गच्छतु, थोड़ी देर भी ये सांस ले लेगा, वहां विश्राम बिसाई ले लेगा, तो फिर आराम से जाएगा लंका में, तो बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी के काम में तो हम बहुत पूरी तरह से सहायता देने के लिए, यूं समुद्र आया, वो समुद्र में से मैनाक यूं निकला, हनुमान जी यूं जा रहे जाते मैनाक यूं आ गया। हनुमान जी ने कहा कि कौन हो भाई, मैं मैनाक हूं, कैसे आए आप मेरे मार्ग के सामने? समुद्र ने आज्ञा दी है और आपके पिता का मेरे पर बड़ा उपकार हुआ है, इसलिए आपकी सेवा के लिए आया हूं। ये अमृत के मीठे मीठे फल है, ये मीठे फल आप खाइए, आपको बड़ी शक्ति मिलेगी, और उसके बाद विश्राम करके आप आगे जाइए। हनुमान जी ने कहा कि हे मैनाक जी, गच्छतो राम कार्यार्थम, मैं राम का काम करता हूं, थकावट कहां होती है? जब कोई अपने स्वार्थ के लिए काम करता है तब काम करते करते काम से अरुचि होती है, तो मैं राम का काम करता हूं, मेरा स्वार्थ का तो काम करता नहीं हूं, तो मेरे को थकावट हो और अरुचि हो, और तब मैं विश्राम की जरूरत पड़े, मुझे तो ऐसा काम करने में उल्टा ज्यादा विश्राम मिलता है। देखो हम लोग महाराज जी से दुराग्रह करते थे कि महाराज जी आप ज्यादा मत बोलिए, थोड़ा बोलिए, विश्राम कीजिए। अब महाराज जी क्या बोल, महाराज जी की आदत थी कि वो अपनी बात ज्यादा रखते नहीं थे, आग्रह नहीं रखते थे, कहते कहते देखो आप लोग तो सोचते हो कि स्वामी जी जितना कम बोलेंगे उतना विश्राम मिलेगा, और मैं जितना ज्यादा सत्संग कराऊंगा मुझे सत्संग से जो विश्राम मिलेगा वो पड़े रहने से नहीं मिलेगा। तो ये महापुरुषों की बात हम लोग क्या समझ सके भाई, हम लोगों की समझ में नहीं आती थी कि क्या बोलते हैं, पर बात वो यही है, सत्संग करेगा कि सत्संग करेगा। देखो सत्संग करने से आदमी की बीमारी दूर होती है, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। एक संत थे, उनके कुछ दमे की बीमारी थी, डॉक्टरों ने कहा ये दवाई लो और वो दवाई लो और वो दवाई लो, संतों ने, संत संत ही थे पुराने जमाने के, उन्होंने कहा कौन ज्यादा दवाई के चक्कर में पड़े, मरना तो पड़ेगा, वो राम राम करते, राम राम श्वासोश्वास राम 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 राम, ये श्वासोश्वास राम राम करते 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 उनके दमे की बीमारी मिट गई। थोड़े दिनों बाद, समय के बाद जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा आपकी तो बीमारी खत्म हो गई, देखो हमारी दवाई लग गई ना, उनका कि आपकी दवाई लगी है कि भगवान के नाम की दवाई लगी है, तो भगवान जाने, दवाई नहीं ली थी उन्होंने, ठीक हो गए। तो भाई इस अध्यात्म मार्ग में चलता है तो उसको लौकिक लाभ मिलता है। बताया ना, एक कैंसर का बीमार था और वो सत्संग की पुस्तकें पढ़ रहा था, महाराज जी की पुस्तकें, बीकानेर की बात है, पढ़ता था, उसको उसको ये मन में भय नहीं था कि मेरे कैंसर की बीमारी अब क्या होगा, मर नहीं, वो मर नहीं, मरेंगे तो ये पुस्तक पढ़ता रहा। महाराज जी मिलने के लिए गए उससे तो वो पुस्तक की बात करे ज्यादा, महाराज जी ने कहा देखो ये है सत्संग का प्रभाव। महाराज जी तो कहे भाई तेरी बीमारी है, तेरे मन में कोई किसी प्रकार से विचलितता तो नहीं है, मृत्यु तो सबके आने वाली है, मैंने कोई डर नहीं और वो ये पूछे महाराज जी आप ये पुस्तक में आ बात क्या बताई, ये पुस्तक में आ बात क्या लिखी, आ बात क्या लिखी। महाराज जी पर बहुत असर पड़ा। 1981 की बात है, चातुर्मास में महाराज जी का वहीं था बीकानेर में, तो वहां अस्पताल में पधारे थे, दोपहर के समय में पधारे थे, उस समय की बात है। फिर चला गया, दो चार दिनों में चला गया। महाराज जी ने कहा ऐसी मृत्यु होती है वो जीने से कितनी अच्छी होती है। हनुमान जी महाराज कहते हैं राम जी के कार्य में हमको भूख लग जाए, प्यास लग जाए और विश्राम की थकावट आ जाए, असंभव बात है। इसलिए मैनाक जी मुझे आप जाने दीजिए। उन्होंने शिखर भाग का स्पर्श किया और हनुमान ते परसा, ऐसे यहां भी गए, शिखर भाग का स्पर्श किया और हनुमान जी आगे निकल गए। तो कि शिखर भाग का स्पर्श क्यों किया, उसका आदर करने के लिए। कहीं हनुमान जी की हठधर्मिता का प्रभाव न पड़े इसलिए हाथ लगाए। ठीक है, देखो आप भी कभी कहीं किसी के यहां जाते हो तो भाई प्यास न होते भी थोड़ा सा जल ले लिया या कोई नहीं खाने लायक चीज के हाथ लगा दी, भाई ठीक है ये स्वीकार हो गया, हम खा नहीं सकते, हमारे अनुकूल नहीं पड़ेगी। ऐसे ही उन्होंने उसका हाथ से स्पर्श मात्र कर दिया, ये आदर करना है, और वो आगे चले गए। आगे गए तो सिंहिका ने उनकी छाया थी वो यूं जंगल वो जड़ में रहने वाली उसने पकड़ ली, हनुमान जी की छाया को उधर हनुमान जी पकड़ लिए गए। हनुमान जी ने कहा भाई हमसे जो है आगे बढ़ा नहीं जा रहा है, क्या बात है, केनेदम में कृतम, ये किसने हमारा मार्ग रोक लिया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। हनुमान जी ने नीचे दृष्टि डाली, नीचे दृष्टि डाली तो सिंह का दिखाई दे दो। फिर हनुमान जी ऊपर से नीचे आए, नीचे आकर के और सिंह का को पानी के अंदर खूब बुरी तरह से मारा, लात वगैरह से उसको वहीं पर मार दिया और वापिस दक्षिण दिशा के लिए आगे गए। आगे जाने पर हनुमान जी महाराज ने बहुत बड़ा वन देखा, जंगल देखा, आकाश मार्ग से ही पक्षी कलरव कर रहे थे। फिर देखा कि यही लंका है, देखो त्रिकूट पर्वत के ऊपर चारों तरफ फिर पर्वत है, फिर देखो ये कैसे कैसे ये वनावली दिख रही है, इसके अंदर चारों तरफ जो है खाइयां है, खाइयां कितनी बढ़िया विचित्र बनाई हुई है, ये लंका है। अब इस लंका के अंदर मुझे प्रवेश करना है, इस लंका में मैं कैसे प्रवेश करूंगा, अरे अभी दिन में प्रवेश नहीं करना चाहिए, रात्रि में प्रवेश करना चाहिए, रात्रो वेक्षामि सूक्ष्म, रात्रि के अंदर छोटा सा रूप बना करके जाऊंगा। ऐसा विचार करके थोड़ा आकाश में ही रहे और जो ही रात्रि आई और रात्रि बनकर के रात्रि के समय में छोटा सा के जो है रूप बना लिया, वहां तो मशक रूप धरिए, मच्छर का रूप है, या मच्छर का रूप आया नहीं भाई, इसलिए क्या बताएं, बहुत छोटा रूप बना लिया। धृत्वा सूक्ष्मम वपुर द्वारम प्रविवेश प्रतापवान, छोटा सा रूप बनाया और रूप बना करके ज्यो ही वे अंदर जाने लगे त्यों ही लंकिनी, लंकिनी जी थी वो लंकिनी लंका की अधिष्ठात्री देवा, अधिष्ठात्री देवता, वो चारों तरफ से निगाह रखती थी, बहुत सुरक्षित लंका को रख रही थी। तो ज्यो ही हनुमान जी महाराज वहां प्रवेश करने लगे त्यों ही वो जोर से चिल्लाया है, बानर रूप धारण करने वाला कौन लंका में मेरी बिना आज्ञा के प्रवेश करता है, चोर की तरह रात्रि के अंदर, कौन हो तुम? ऐसा कहकर के उसने हनुमान जी के शरीर में लात लगाई, उनको एक छोटा सा बंदर समझ के लात मारी। हनुमान जी भी खड़े हो गए, हनुमान जी खड़े होकर के अपने बाएं मुक्के से उसके मुंह के ऊपर यूं प्रहार किया, बाया मुक्का। देखो इसका मतलब हनुमान जी के दोनों ही हाथ चलते होंगे, प्राय करके दाहिना हाथ चलता है, यहां वाम मुष्टिना, बाएं मुक्के से लगे। ज्यों ही वो मुक्का लगा वो गुलाची खाते हुए नीचे गिरी, खून उसका गिरने लगा, तो बिना बताए वो नाम लेकर कहने लगी, तुम्हारा नाम हनुमान है क्या रे, तुम वायुपुत्र हो क्या, तुम केसरी नंदन हो, तुम अंजना नंदन हो, बोलो हनुमान तुमने लंका को जीत लिया। मैं अपने पिछले जन्म को याद करती हूं। एक बार ब्रह्मा जी ने हमको बताया था, ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब 28वां चतुर्युग आए और उसमें त्रेता युग आएगा, उसमें साक्षात अविनाशी नारायण भगवान दशरथ जी के यहां अवतार लेंगे और भगवान की जो योग माया है, जो सृष्टि को बनाने वाली, सृष्टि का संचालन करने वाली, सृष्टि को अपने में लीन करने वाली है, वो योग माया सीता के रूप में जनक जी के यहां अवतार लेगी। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भूभार हरणार्थाय प्रार्थितोयम मया क्वचित। और ब्रह्मा जी भी बोल रहे थे कि देखो, इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मैंने उनसे निवेदन किया था, तो वो यहां आएंगे। वो राम एक बार अपने भारिया और अपने छोटे भाई के साथ वन में आएंगे। उस समय में रावण उन तीनों में से सीता का हरण करेगा। सीता जी की खोज में निकले हुए राम सुग्रीव के वहां जाएंगे और सुग्रीव जानकी की खोज कराने के लिए बंदरों को सब दिशाओं में भेजेंगे। तब एक बंदर तुम्हारे लंका की तरफ आएगा और जब तुम उसके साथ पहले कुछ कठोर बोलोगी और अप्रिय व्यवहार करोगी तो वो तुम्हारे मुक्का मारेगा। मुक्का मारने से तुम व्यथित हो जाओगी। व्यथित हो जाओगी तब समझ लेना कि अब ये लंका समाप्त तो हो जाएगी, रावण का अंत हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए हनुमान, मैं लंका में बरसों से रह रही हूं, कल्पों से रह रही हूं, रावण तो कल आया है। जब ये सीता की चोरी करके लाया सीता को, तो मैं बहुत हर्षित हुई कि अब मेरी मुक्ति का समय आ रहा है। अब तुम सीता को जीत लिए, लंका को जीत लिए हो। हनुमान, मैं बहुत प्रसन्न हो गई, मेरा तो कल्याण हो गया। तुमको अभी बता दूं कि सीता यहां रावण के महल के पास अशोक वाटिका है, रावण के महल के पिछवाड़े हिस्से में, वहां पर वो एक शिंसुपा वृक्ष के नीचे बैठी है। शिंसुपा क्या होती है, जिसको हम लोग शीशम बोलते हैं, उस वृक्ष के नीचे वो बैठी है। टाली बोलते हैं मारवाड़ी में, टाली का वृक्ष, जिसके पत्ते होते हैं यूं यूं एकदम एक दूसरे के यूं, तो नीचे छाया के अंदर वो ऐसे छपके छपके नहीं होते उसमें, क्योंकि उसके पत्ते छिदे छिदे नहीं होते, खूब गहरे होते हैं, और इन पत्तों के बीच में जो जगह होती है उसके ऊपर ऊपर वाले पत्ते उनको ढक देते हैं। ऐसे वो शिंसुपा वृक्ष बहुत छायादार होता है, उस शिंसुपा वृक्ष के नीचे वो बैठी हुई है। उसके चारों तरफ घोर राक्षसियां बैठी हुई है। मैंने तुमको इतना परिचय बता दिया, अब तुम जाओ जल्दी अपना ये काम करो, राघव से निवेदन करो। हे हनुमान, मैं कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई। हनुमान, तुम्हारा आज ये मुक्का क्या लगा है, ये मुझे आज भगवान की स्मृति जागृत हो गई। राघव स्मृति ममासीद, मेरे अंदर थी तो सही पर वो जागृत नहीं हुई थी। लोग तो यही कहेंगे कि देखो, ये रावण की सेविका बनी हुई लंका की रक्षा करने में लगी है, पर मैं तो अपना स्वार्थ देख रही थी। हनुमान स्वार्थी व्यक्ति होता है, वो नीचा भी काम करे लेकिन उसका स्वार्थ पूरा हो तो नीचा काम करने में संकोच नहीं करती है। अतएव मैंने यहां लंका में संकोच नहीं किया कि रावण के यहां क्यों रहती हूं। रहती हूं क्योंकि बहुत बड़ा काम होने वाला, मेरा तो राम जी का संग होने वाला है, राम जी के भक्त का संग होने वाला है। ये वही लंका है जिसके अंदर राक्षस भी रहते हैं, और आज ये वही लंका है जिसमें राम का प्यारा दूत भी आया, भक्त भी आया है। मैं भक्त के संग से बहुत आनंदित हो गई, तुमने हमको भगवान की स्मृति दिला दी। हे भगवान, आप मेरे हृदय में रहकर मेरा कल्याण कीजिए, अपना प्रेम मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार से उसने हनुमान जी महाराज से बात कही। अब इन दोनों की जब ये बातें हो रही थी तो पार्वती एक बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य, एक साथ रावण की और सीता जी की बाएं आंख फड़की और राम जी महाराज की दाहिनी आंख फड़की। वहां प्रवर्षण पर्वत पर उनकी तो दाहिनी आंख फड़की राम जी की, और धरा सुतायाश्च दशाननस्य पुष्पोर वामाक्षि, और सीता के और लक्ष्मण और जो है रावण के बाई आंख फड़की। अब आप जानते ही हो कि सीता जी की बाई आंख फड़कना शुभ है, राम जी की दाहिनी आंख फड़कना शुभ है और रावण की बाई आंख फड़कना अशुभ है। एक साथ ये आंखें फड़की। इधर हनुमान जी महाराज लंकिनी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ओहो, हमारे भगवान कैसे दयालु है, किस जन्म की भक्ति की हुई को भगवान कैसे याद रखते हैं और किस माध्यम से भगवान उस भक्ति का फल कब प्रदान करते हैं। इसका अर्थ यह है सज्जनों, ये धन संपत्ति रुपया पैसा गारंटी नहीं है कि हमको अगले जन्म में मिले, लेकिन ये गारंटी है कि इस जन्म का किया हुआ नाम अगले जन्म में क्या सैकड़ों जन्म में अवश्य मिलता है। हनुमान जी बड़े खुश हो गए। अब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। लंका में प्रवेश करके और रात्रि के अंदर वे खूब इधर उधर निर्द्वंद होकर लंका के अंदर घूमते घूमते जो है बहुत सा निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहले रावण के महल में गए। रावण के महल में जाकर उसने देखा कि कहां क्या चीज क्या रहती है, रावण का खान पान कैसा है, रावण का व्यवहार कैसा है। बड़े बड़े कड़ा देखे, बड़े बड़े टोप देखे, उन टोपों को उठा उठा के देखा, कड़ाहों को उलट पुलट करके देखा। बड़े बड़े मकान थे, मकानों के जालदानों में गए, क्या क्या वहां पर सामग्री है वो देखी, और उसके बाद शस्त्रागार में गए, उसके बाद जहां पर वो बारूद पड़ा रहता था वहां गए, उसके बाद और जो जो कहां कहां सेना है वहां सब जगह वो देख करके, और जहां रावण रात्रि में सो रहा था वहां भी गए और सोते हुए रावण के वहां जाकर के देखा। अच्छा, ये इस प्रकार से सोता है और ये इसका ऐसा रहवास है, सब देखा सब देखा। लेकिन साथ साथ में सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। और लंकिनी की बात सुनकर के हनुमान जी महाराज अब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। अशोक वाटिका को देखा कि अरे, यहाँ के वृक्ष तो बड़े अच्छे हैं और यहाँ के वृक्षों की जो है शोभा ही अलग है, सुगंधी भी कैसी आ रही है, लताओं की सुगंध आ रही और पुष्पों की सुगंध आ रही है। वृक्ष भी ये रात्रि में भी पक्षी कितनी सुंदर आवाज करते हैं। अशोक वाटिका के अंदर जो तालाब हैं, उन तालाबों के अंदर हंस कारंडव यह भी कैसी मधुर वाणी से है, यहाँ मधुर स्वर प्रदान करते हैं। चारों तरफ सोने के बड़े सुंदर महल हैं। ऐसे उन महलों को देख करके हनुमान जी महाराज देखें सीता जी कहाँ हो सकती हैं। एक पुराना टूटा फूटा वहां पर एक मंदिर था, उस मंदिर के ऊपर जाकर बैठ गए और एक एक वृक्ष को बड़े गौर से देखने लगे कि वो टाली का वृक्ष, शीशम का वृक्ष कहाँ है। खूब ऊंचा था वो, ऊंचाई से देखते 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 चारों तरफ दृष्टि डालते उनको पूरी अशोक वाटिका के ठीक बीच में एक ऊंचा सा वृक्ष दिखाई दिया। तब हनुमान जी महाराज धीरे धीरे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, दूसरे वृक्ष से तीसरे वृक्ष पर, बिना किसी वृक्ष में संचालन किए हुए टहनियों को पकड़ पकड़ करके, और वे उस वृक्ष के ऊपर जाकर विराजमान हो गए, जिस वृक्ष के ठीक नीचे सीता जी विराजमान थी। ऐसे वृक्ष पर जाकर वो विराजमान हो गए। अब आगे हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, क्या देखते हैं, वो मध्यम विश्राम के बाद कथा कहेंगे।
राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम